विद्यमान महान जिन बिचरे हमारे ध्यान में। आचार्य पूज्यपाद ने सर्वार सिद्धि नामक ग्रंथ में पंचकल्याणक दर्शन को सम्यक दर्शन का निमित्त बताया है। मैं समझता हूँ मेरी आवाज आप सब तक पहुँच रही है, जिसके पास ना पहुंच रही हो वो हाथ उठाए। किसी ने हाथ नहीं उठाया इसका मतलब सबके पास पहुंच रही है। तो आचार्य पूज्यपाद ने सर्वार सिद्धि नामक ग्रंथ में पंच कल्याणक दर्शन को सम्यक दर्शन का निमित्त बताया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पंच कल्याणक में जो आप देख रहे हैं शुरू से आज तक अभी तक, इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो सम्यक दर्शन में निमित्त बन सकती है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में पांच लब्धियां होती हैं, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि। इसमें चार लब्धियां तो उपादान रूप हैं और देशना लब्धि निमित्त रूप है। तो जो अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है वही हमारे सम्यक दर्शन में वास्तव में निमित्त है और उसकी वजह से पूरे पंच कल्याणक को निमित्त कह दिया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं आप कहाँ रहते हैं कि जयपुर में, तो जयपुर तो बहुत लंबा चौड़ा है, क्या पूरे जयपुर में हम रहते हैं? जयपुर के एक छोटे से हिस्से में रहते हैं और नाम लेते हैं पूरे जयपुर का, पर छिंदवाड़ा में तो पूरे जयपुर का नाम लेते हैं। पर जो अमेरिका वाले पूछते हैं अमेरिका में कि आप कहाँ रहते हैं, तो कहते हैं इंडिया में। तो उसके एक छोटे से हिस्से में रहते हैं फिर भी हम पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं, ये कहने का व्यवहार है ना। तो पंच कल्याणक के वो थोड़ा सा वो हिस्सा जो दिव्य ध्वनि वाला है वो वास्तव में सम्यक दर्शन का निमित्त है और उसकी वजह से पूरे पंच कल्याणक को सम्यक दर्शन का निमित्त कह दिया जाता है। और उससे फिर हम समझने लगते हैं कि जो नाचना गाना उछलना कूदना ये सब सम्यक दर्शन का निमित्त है। तो पांच लब्धियां हैं ना, उन्हीं में तो हिसाब किताब बैठाना पड़ेगा हमारे लिए जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो असली पंच कल्याणक का वो बिंदु तो अब आज आया है। तो वास्तविक पंच कल्याणक तो समझ लीजिए आज शुरू हुआ है और इसीलिए समझ लीजिए कि सारी जमीन की धुलाई मुलाई हुई है। आज के दिन मुझे बहुत सी बातों की चर्चा करनी है, इसमें दो तीन बिंदु मुख्य हैं। पहली बात तो एक उन तीर्थंकर परमात्मा की वो धर्म सभा, उसके बारे में बात करनी है। दूसरी उनकी वो दिव्य ध्वनि, उसके बारे में बात करनी है। और तीसरी उस दिव्य ध्वनि में जो माल आया, जो उपदेश उन्होंने दिया, उसकी बात करनी है। तो तीन बिंदुओं से अपन अभी यहाँ विचार करेंगे। तीर्थंकर की धर्म सभा ऐसी नहीं होती है जैसी कि अपनी होती है कि एक तरफ वक्ता बैठा होता है, इधर को मुंह किए, और सामने सारी भीड़ बैठी होती है वक्ता की तरफ मुंह किए। तो उनकी सभा कैसी होती है आपने देखी होगी ना दोपहरी में, कि बीच में भगवान विराजमान होते हैं और चारों तरफ जनता बैठी होती है। अलग होती है कि नहीं, कैसी होती है? कि जैसे इस प्रकृति की बरसात ने आज मेरी सभा को कर दिया है। उदाहरण के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, नहीं ना। एक पंक्ति आती है अपने पुरानी पूजन में, देवसास गुरु की पुरानी पूजन थी ना, ते एक मुख चारित्र भासत त्रिजग माही प्रधान है, ये भगवान के समोसरण का ही वर्णन है। और उसमें ये लिखा है कि ते एक मुख चारित्र भासत, कुछ लोगों को लगा ये बात तो ठीक नहीं है, जरा सुधार दो। आजकल दूसरी की कविताओं को पूजनों को सुधारने का लोगों को बहुत शौक चल रहा है। अपने भी पूजन है 16 कांड पूजन, जिसमें पुण्य पाप सब नाश के ज्ञान भान प्रकाश, तो यहीं आपके छिंदवाड़ा के आसपास किसी ने ये बदल दिया है क्या कि पाप पुंज सब नाश के, पाप पुण्य था ना तो पुण्य की जगह पुंज कर दिया, तो उन्होंने भी बदल दिया कि है एक मुख पर चार भासत त्रिजग माही प्रधान है, कि हे भगवान तुम्हारा एक मुख है पर वे चार मालूम पड़ते हैं। देखो आपने देखा होगा ना, चार मालूम पड़ते हैं, अपन चार मूर्तियां विराजमान कर देते हैं उसी के प्रतीक में। तो हमारे राम जी भाई थे तो वो कहते नहीं नहीं ये अर्थ ठीक नहीं है। तो क्या अर्थ ठीक है, तो वो ऐसा कहते थे कि एक मुख चारित्र भासत, कि हे भगवान तुमने एक मुख माने निश्चय चारित्र का ही वर्णन किया है, व्यवहार चारित्र का वर्णन किया ही नहीं। ऐसा अर्थ किया करते थे। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ना वो पहले वाला अर्थ सही है और ना ये दूसरा वाला अर्थ सही है। तो सही अर्थ क्या है कि हे एक मुख चारित्र भासत, हे भगवान आपका मुंह तो एक ही है लेकिन चारित्र माने चारों ओर से, फोर एंड वाइड, चारों तरफ से जनता बैठती है और हरेक को ऐसा मालूम पड़ता है कि भगवान सीधे मेरी तरफ देख रहे हैं, बस मेरी आंख मिला के बात कर रहे हैं। चारित्र भासत, भासत माने बोलते हैं नहीं, मालूम पड़ता है। एक्चुअल में चार मुख नहीं है, चारों तरफ मुख नहीं है, लेकिन उनका वो स्फटिक मणि जैसा शरीर हो गया है ना, तो उसमें ऐसा अतिशय प्रकट हो गया है कि चारों तरफ से उनको ऐसा लगता है कि मेरी तरफ ही देख रहे हैं, और इसका नाम है एक मुख चारित्र भासत। और हम क्या करें, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो हमने चार मूर्तियां विराजमान कर दी कि एक मूर्ति के चार मुंह बना दिए ब्रह्मा जी जैसे, क्यों? लेकिन वास्तव में वो एक ही मुख है लेकिन चारों तरफ से मालूम पड़ता है। प्रत्येक श्रोता को ऐसा लगता है ये जो बात कही जा रही है वो भगवान की मुख से, वो सब मेरी तरफ देख करके ही कही जा रही है, ये उनकी सभा का स्वरूप था। देखो उनकी सभा में 12 कोठे होते हैं, मनुष्यों का तो एक ही होता है, देवताओं के तो बहुत होते हैं 7-8, क्यों? त्रिंचों का भी, मनुष्यों के भी 2-3 होते हैं, मुनियों का अलग, समझे ना, सावकों का अलग, सावकाओं का अलग, ऐसे अलग अलग होते हैं, लेकिन त्रिंचों का एक ही होता है 12 कोठाओं में से। तो मेरे को बड़ा विचार आया कि ये अन्याय है, सबसे ज्यादा संख्या तो त्रिंचों की है और उनके लिए 1 कोठा, और देवताओं ने बनाया क्या है समोसन, जो अपने लिए 8-8, क्यों? और बेचारे पशुओं में तो 2 तरह का भेद है, कुछ मांसाहारी हैं और कुछ शाकाहारी हैं, और वे एक दूसरे को खा जाएं, तो उनके लिए तो कम से कम दो कोठे तो चाहिए ही चाहिए थे, एक शाकाहारियों का अलग और एक मांसाहारियों का अलग। एक गाय और शेर को एक ही कोठे में बैठा दिया, और मनुष्यों को अलग अलग कोठे। मैंने बहुत सोचा कि ऐसा क्यों है, अंत में मेरे बात समझ में आ गई आपको, तो आपको बता दूं क्या, जिसके लिए आपने आज मीटिंग करी थी ना, वही बात है। उन्होंने क्योंकि ये देखा कि भगवान के समोषण में जाकर गाय और शेर, सांप और नेवला एक साथ बैठ के भगवान की दिव्य ध्वनि सुन सकते हैं, लेकिन ये छिंदवाड़ा वाले दो ग्रुप के एक साथ बैठ के नहीं सुन सकते। समझ रहे ना, हमारी क्या इज्जत है भगवान के समोषण में, उनकी दृष्टि में। जरा सोचना कि इन्हें भैया अलग अलग बैठा लो, नहीं तो लड़ मरेंगे। कि भाई भाई साथ साथ में नहीं बैठ सकते हैं सुन के, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए भी। तो उनके समोषण की विशेषता एक तो ऐसी है कि सभा चारों तरफ होती है, बीच में वो बैठे हैं, चारों तरफ से हर आदमी को ऐसा लगता है कि भगवान मेरी तरफ देख रहे हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि वो धर्म सभा जो होती है वो जमीन से 500 धनुष ऊंची थी आदिनाथ की। 500 धनुष समझते हैं कितना होता है, चार हाथ का एक धनुष ऐसा होता है, एक धनुष ऐसे 500 कितनी ऊंचाई पे होगी, कितनी सीढ़ियां होंगी। कहते आदिनाथ भगवान के समोषण में 20,000 सीढ़ियां थी। 20,000 सीढ़ियों का मतलब समझते हैं, दो दफे गिन्नार जी की वंदना, गिन्नार जी की 11,000 सीढ़ियां हैं। भगवान का प्रवचन सुनने जाना हो तो 20,000 सीढ़ियां के ऊपर जाना पड़ेगा। तो मेरे मन में विचार आया कि क्या समझदारी का काम किया, इतने ऊपर बनाने की क्या जरूरत थी, समतल भूमि पर बनाते क्यों, तो सब जनता जाती आराम से सुनती, थोड़े बुड्ढे शुड्ढे लोगों का भी तो ध्यान रखना चाहिए था कि नहीं था। ये हार्ट पेशेंट हैं, ये घुटने के दर्द वाले हैं, इनका भी ध्यान रखने की जरूरत थी कि नहीं थी, इतना ऊंचा बनाने की क्या जरूरत थी। और उसमें बाग बगीचे चारों तरफ, नृत्यशालाएं नाटकशालाएं बन रही हैं, शास्त्रों में वर्णन आता है कि बीतरागी के दरबार में राग के कामों का क्या काम, नृत्यशालाओं का क्या काम, नाचने वालियों का क्या काम, बाग बगीचों का क्या काम है, झीलों का क्या काम, तालाबों का क्या काम, सरोवर का क्या काम, कमल खिल रहे हैं कमलों की क्या जरूरत, ये सब बातें बहुत विचारणीय हैं। कि इंद्र जैसे समझदार आदमी ने ये सभा बनाई थी, वो उसका व्यवस्थापक था सौधर्म इंद्र, क्यों तो उसने क्या सोच के ये बनाया, आपको वो चित्र लगता है कि इतनी ऊपर नहीं बनाता तो कहां बनाता, नीचे जमीन पे बनाता, जानते हैं कितना लंबा चौड़ा होता है। भगवान ऋषभ देव का समोसरण 12 योजन लंबा और 9 योजन चौड़ा था, और 2000 कोस का एक योजन, 4 कोस का मान कुछ भी मानो, जो भी मानो, ख्याल में आया ना कितना लंबा चौड़ा समोसरण होगा, होगा ना। अब इतनी लंबी चौड़ी जगह मुझे बताओ कहां छिंदवाड़ा के आसपास के, जहां बना देते हुए नीचे जमीन पे। मेरा आप कौन समझ रहे क्या कहना चाहता हूं, आपने ये पंच कल्याण किया तो इतनी सी जगह खोजने में पसीना छूट गया होगा, इतनी बड़ी जगह जमीन पर मिलना आसान नहीं थी, और मिल भी जाती तो शहर से कितनी दूर मिलती, और शहर में मिलती तो सारे मकान तोड़ के साफ करना पड़ते क्यों, जंगल में तो ऊपर को नहीं जाते तो आड़े जाना पड़ता, तो फिर ये रोना होता कि इतने दूर क्यों। और वहां भी जमीन पे कितने पेड़ पौधे वनस्पति खेत खलियान सबकी सफाई करनी पड़ती, कितने जीवों की हिंसा होती, सोचो आप। जो हरी घास पर नहीं चलते हो क्योंकि उन्हें तकलीफ होगी घास को, जे प्रतिज्ञा जिन मुनिराजों की हो जब उन्हें भगवान बनने की सोची थी तब एक बात थी और अब भगवान बन गए और इतने पेड़ों को कटवा देते। हमारे पिताजी हमसे कहा करते थे बेटा कहीं मकान लेने लायक हैसियत हो जाए तो बना बनाया खरीद लेना, बनवाना नहीं, तो बहुत हिंसा होती है। सोदर बिंद्र ऐसा काम कर सकता था, सारी कटाई छटाई कर देता, पहाड़ी की पहाड़ी साफ। क्या ये तीर्थंकर साधु संतों का काम है? ग्रस्त का भी ये काम नहीं है ढंग से, तो ग्रस्त भी इससे बचता है। इसलिए सौधर्म इंद्र ने ये व्यवस्था इसलिए की ऊंचाई पे कि नीचे किसी को नो डिस्टरबेंस, बाजार चलते रहें, मकान बने रहें, खेत खलियान रहें, वृक्ष रहें, पेड़ पौधे, किसी को कोई तकलीफ नहीं। और ऊपर जाकर उसने अपनी विक्रिया से वो समोषण बना दिया, एक भी जीव की हिंसा का प्रसंग नहीं, किसी को कोई डिस्टरबेंस नहीं। वहां लिफ्ट लगी थी मालूम आपको, ठीक शास्त्र में लिखी है, पहली सीढ़ी पे आप पैर रखो और अंतिम सीढ़ी पे अपन को पाओगे फटाफट। इंद्र की व्यवस्था थी, अमेरिका वालों से कोई कम थोड़ी थी। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं, मान लो सीढ़ियां चढ़ के भी जाना पड़े और वो बाग बगीचे में भी जाना पड़े तो ये सारी व्यवस्था क्यों, बाग बगीचे क्यों, नृत्यशालाएं क्यों, नाट्यशालाएं क्यों? इसलिए कि एक क्लास में जब एक अध्यापक पढ़ाता है नौवीं क्लास को तो उसकी क्लास में 50 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं होते, सब एक क्लास के होते हैं, सब आठवीं पास होते हैं और एक भी नौवीं पास नहीं होते हैं और सब एक भाषा भाषी होते हैं। तो ना वहां भाषा की प्रॉब्लम ना स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम, वो उस हिसाब से कि नौवीं कक्षा वालों को कैसे पढ़ाना है वो पढ़ा देता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये सभा है इसमें बड़ी दिक्कत है, ना तो भाषा का नियम, गुजराती भी बैठे हैं, हिंदी भी बैठे हैं, मराठी भी बैठे हैं, क्यों सारे भाषा भाषी बैठ जाते हैं कि नहीं प्रवचन सुनने के लिए, और छठवीं पास भी बैठे हैं तो निरक्षर भट्टाचार्य हमारी कई माताएं बहनें भी बैठी हैं और बड़े बड़े उत्तमचंद जी जैसे बड़े बड़े पंडित भी बैठे। मैंने जितनी एक जो सभा है सभा का एक विशेषता है, चाहे डिफेक्ट का जो कुछ कहना हो कह लो आप, कि इसमें ना तो योग्यता का कोई स्टैंडर्ड है, ना भाषा का कोई स्टैंडर्ड है, ना समझदारी का कि सम्य दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, कि छठवें गुण स्थान वाले हैं कि पांचवें वाले हैं कि चौथे वाले हैं, क्यों सब एक साथ। तो ये बोलना कितना कठिन काम है कि सबको कुछ ना कुछ मिले। हर आदमी यहां आया वो ऐसा ना कहता जाके हमारी तो समझ में कुछ नहीं आए तो बड़े पंडित जी थे, क्यों ऊंची ऊंची बातें हो तो, और एकदम नीची नीची हो तो बड़े बड़े पंडित कहें कि हमारा तो एक घंटा बेकार गया, ये तो हम सब जानते ही थे। उन्हें भी कुछ मिलना चाहिए कि भाई हमने भी एक घंटे में दो बातें तो सीखी हैं नहीं, क्यों। तो ऐसा बोलना कोई आसान तो नहीं है, उसमें कितनी सावधानी की जरूरत है। और प्रधानमंत्री जैसा बड़ा वक्ता होता है तब क्या होता है, गांव के शहरिया आदिवासी ये भी और आईएएस ऑफिसर भी और वो बुश भी अपना टेलीफोन लगा के बैठा के क्या बोलते हैं अटल बिहारी देखते देखें तो, यानी बड़े बड़े लोग सुनने बैठे छोटे छोटे सुनने बैठे, सबके हिसाब से बोलना पड़ता है कि नहीं बोलना पड़ता है। और तीर्थंकर जैसा वक्ता हो बोलिए, वहां सौधर्म इंद्र भी बैठे, वहां गंधर्व देव भी बैठे, यहां गाय भैंस कुत्ते बिल्ली भी बैठी, भा भा गजब हो गया। ऐसी सभा, तो जब श्रोताओं में इतनी विविधता हो, भाषाओं में इतनी विविधता हो कि सब भाषा वाले बैठे हैं, और त्रिंजों की भाषा तो अलग ही है, तो इतनी विभिन्न भाषाओं वाले, इतनी विभिन्न योग्यताओं वाले जब लोग बैठे हों और वहां कोई एक वक्ता बोले, तो उसकी कैसी भाषा होनी चाहिए, और इसका मतलब सारी भीड़ टूट पड़ी, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली सब संबोधन में दौड़े दौड़े जा रहे हैं, क्यों आदिवासी भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, इतनी भीड़ कैसे संभाले, वहां सब व्यवस्था भंग नहीं हो जाएगी। सोधर मैंने सोचा क्या करूं, ये भीड़ पे कंट्रोल कैसे करूं, कि भाई पूछ लो, सलाह बहुत है ना, छिंदवाड़ा वालों ने दो दो पंच कल्याण करे, इनसे पूछ लो ना कि भीड़ पे कंट्रोल कैसे किया जाता है, क्यों। तो किसी छत्री से पूछा, करे उसमें क्या है, घुड़सवार पुलिस लगा दो, वो धमाधम सोटे चलाओ भाग जाएंगे, क्यों गोली चलवा दो, हवा में ही गोली चलवा दो भाग जाएंगे सर। किसी बनिए से पूछा कि सेठ जी आपका क्या कहना है, कि 100 रुपए का टिकट लगा दो, पैसा के पैसा इकट्ठे हो जाएंगे, भीड़ की भीड़ चढ़ जाएगी, कि नहीं 100 का टिकट खरीदे तो सभा में तैयार हैं, तो बोलिया शुरू कर दो। अरे तुम तो बहुत समझदार लोग हो, तुम तो सौधर बिंद को खड़े होके बेच देते हो, अवनेन्द्र कुमार ने बताया मेरे को, तो इधर हाथी की बोली बोलने लग गए, तो हाथी वाला आ गया कि भैया मुझे नहीं बेचना, ये 500 रुपया मेरे को बेचे, हाथी बेचे देता, इसके हाथ में तो जो चीज पड़ना चाहिए बेच के खा जाए। बनिया सौधर बिंद्र ने ना बनिए की मानी, ना तो टिकट लगाई, और ना उन क्षत्रियों की मानी कि डंडे के बल से इनको रोक दो। कैसे रोकें कि जिससे भगवान के समोसरण में सिलेक्टेड लोग पहुंचे, वो सिलेक्टेड मतलब समझे ना, हिंदी में जरा जो शब्द है ना वो जरा अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने अंग्रेजी बोली है, क्या बोलते हैं हिंदी में, छटे हुए लोग, छटे छटाए, तो इसका बहुत खराब अर्थ होता है हिंदी में, इसलिए मैंने कहा सिलेक्टेड पर्सन, क्यों चुने हुए लोग पहुंचे। इसके लिए वहां का हिसाब क्या, कि जो राग रंग के प्रेमी हैं वे नाचने गाने देखने में उलझ जाएं, जो बाग बगीचा के प्रेमी हैं वे घूमने में उलझ जाएं, जो तैरने के प्रेमी हैं वो सरोवर में गोता लगाने लग जाएं, और जो भगवान के तत्व की रुचि वाले हैं नीति गर्दन करके इरिया समिति पूर्वक सीधे यहां देखें ना वहां देखें, और पश्चिम का समय हो गया है और सीधे वहां पहुंच जाएं, तो अपने सिलेक्टेड लोग पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। जब सिलेक्टेड लोग पहुंचते हैं तो उसका परिणाम भी क्या आता है, उनकी दिव्य ध्वनि खरी, तो इतने लोगों ने दीक्षा ले ली, इतने लोगों ने अनुमृत ले लिए, इतने लोगों को सम्मा दर्शन हो गया, आता ना शास्त्रों में, ये जो अच्छे अच्छे स्कूल होते हैं ना, बहुत स्टैंडर्ड के स्कूल जिनमें 2-2 लाख का डोनेशन देकर अपने एक पहली क्लास के बच्चे को भर्ती कराना पड़ता है, इनका रिजल्ट बहुत बढ़िया क्यों रहता है, सारे आईएएस ऑफिसर इन्हीं के स्कूल के विद्यार्थी क्यों बनते हैं, इसलिए नहीं कि अध्यापक बहुत अच्छे हैं, वे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो किस लिए, क्योंकि वे भर्ती वक्त ही इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो फर्स्ट डिवीजन पास हुए हों, जो मेंड गोल्ड मेडलिस्ट हों, अच्छे से अच्छे ज्यादा नंबर हों, उनके हिसाब से सिलेक्शन करेंगे, 97% 96% वालों से नीचे लेंगे ही नहीं। जब इतने होशियार बच्चों को तुम भर्ती करोगे तो वे तो होशियार निकलने ही वाले हैं, तुमने क्या किया, क्यों। और सरकारी स्कूल में सब घड़े गधे घोड़े भर जाएंगे, तो वहां का रिजल्ट जितना रहना है उतना ही रहना है, क्या करेंगे। ये सवाल बे मास्टर खराब है, जे मास्टर अच्छे हैं इतनी बात नहीं है, वो सिलेक्शन का माल आया ना, तो उनके पास वो सिलेक्शन का माल गया। सिलेक्शन का माल भी कब कर सकते हैं, जब एक जगह की 100 जगह भर्ती करने के लिए एप्लीकेशन लेके खड़े हुए तो, और एक ही भी नहीं आ रहा हो तो, बोलो इतनी भीड़ हो वहां तो वे सिलेक्शन करें किनको आने देना किनको नहीं आने देना। यहां कोई हमारा प्रश्न सुनने आवे ही नहीं तो सिलेक्शन का सवाल क्या है, जो आ जाए उसी को सुना है भैया। तो उसका रिजल्ट भी कुछ नहीं निकलता है। 45-45 वर्ष तक गुरुदेव चले गए बोलते बोलते, और अभी बहुत लोग बोल रहे हैं, और रिजल्ट जिसे अपन कहते हैं वो उंगलियों पे गिनने लायक नहीं है। क्यों? तो समोसरण में ये बाग बगीचे क्यों रखे गए, ऊंचाई पे क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि इंद्र की ये समझदारी की व्यवस्था थी कि उनके प्रवचन सुनने के लिए सिलेक्टेड लोग आए। आज का दिन कितना भाग्यशाली दिन है, क्यों? कि भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का लाभ हमारे लिए प्राप्त हो रहा है। और आज की बात नहीं है, आज से लगातार अब 700 बरस तक रोजाना दिन में 7 घंटा और 12 मिनट नेमिनाथ भगवान के व्याख्यान होने वाले हैं। 1000 वर्ष की उनकी आयु थी और 300 वर्ष की उम्र में उन्हें दीक्षा ली थी और केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 700 वर्ष बाकी हैं, तो 700 वर्ष तक लगातार उनके व्याख्यान होने वाले, रोजाना दिन में कितने, 7 घंटा और 12 मिनट। ये पंच कल्याणक का अंत नहीं हुआ है, ये पंच कल्याणक का आरंभ हुआ है, वो सम्मा दर्शन के निमित्त वाले पंच कल्याणक का। क्यों? अपना तो कल खत्म हो जाएगा केवल, क्यों भाई? इस सचमुच आज यदि नेमिनाथ का पंच कल्याणक हुआ होता और उन्हें आज केवल ज्ञान हुए होते और उनकी सभा के श्रोता हम होते और हमको ऐसा भाग्य मिला होता कि रोजाना आज से 7 घंटा और 12 मिनट भगवान के मुख से तत्व ज्ञान की बात सुनने को मिले, इससे बड़ा भाग्य और क्या होता, होता है ना? तो अब मैं आपसे पूछता हूं, मान लो है दे असली और कल से 7 घंटा और 12 मिनट व्याख्यान होंगे, आप सब लोग आने को तैयार हैं? अगर सुबह सारी चिड़ियां उड़ जाएंगी, क्यों आओगे सुनने? सब कहां सब आएंगे? सोच समझ के जवाब दो, 7 घंटा और 12 मिनट। धंधा पानी कब करोगे? नौकरी पे कब जाओगे? दुकानदारी कब करोगे? ऐसे पात्र जीवों उस काल में मौजूद थे कि उनके रोजाना 7 घंटा और 12 मिनट व्याख्यान होंगे और वो सब सुनेंगे। देखो आज हमारी पोजीशन क्या है, जरा गहराई से विचार करके देखना। हम भगवान की पूजा तो 8 घंटा हुए तो खड़े होवे तैयार हैं 5 लाख की बोली लेकर, ख्याल में है ना? आदमी बन के नहीं, इंद्र बन के जीते जी। समझ गए ना? बोली लेके उनकी पूजा भक्ति करने के लिए हम 8 घंटा खड़े होना हो तो खड़े होने को तैयार हैं, लेकिन उनका 8 घंटा व्याख्यान सुनने के लिए तैयार हैं क्या? आप जानते हैं भगवान की पूजा भक्ति और उनके प्रवचन सुनने की बात, इन दोनों में कितना अंतर है? भाव तो दोनों ही शुभ हैं, लेकिन फर्क कितना है कि जब जनता बोले और भगवान सुने उसका नाम है पूजा भक्ति। आप सब बोलते हो नहीं, सब बोलते कि नहीं स्पीकर पे, वो सुनता कौन है स्पीकर पे? कम सुनते होंगे भगवान। जब भगत हो गए वक्ता और भगवान हो गए श्रोता, उसे कहते हैं पूजा और भक्ति। और भगवान हो गए वक्ता और भगत हो गए श्रोता, उसे बोलते हैं प्रवचन, भगवान की दिव्य ध्वनि का खेलना। बोलो बढ़िया बात कौन है? हम बोले और भगवान सुने, वो बढ़िया बात है कि भगवान बोले हमें से नहीं बढ़िया बात है। देखो अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये बढ़िया बात है कि आप सब बोलना शुरू करें और मैं सुनूं, वो बढ़िया होगा। क्या होगा, बाजार लग जाएगा। हमारे पास ऐसा है क्या जो हम भगवान को सुनाएं? अपना दुखड़ा दुखड़ा रोने के अलावा कुछ है हमारे पास? तुमको बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम्हें जानत दिनेश। कहे भगवान, तुम्हें जाने बिना मैंने जो जो दुख पाए हैं तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि तुम्हें केवल ज्ञान हो गया है ना। कि तुझे ये पक्का पता है कि हाँ पता है, मैं सब अच्छी तरह जानता हूं कि अच्छी तरह जानता हूं, जानते हो मैं कि तुम्हें सब पता है, तो अब तो चुप हो जा। भगवान शुरू करता है, पशु नार के नर सुर गति मझार भवे धर धर मरे अनंत वाल। शुरू कर दी अपनी रामायण, ये भी कहता जाता है कि आपको पता है, और फिर भी अपनी रामायण शुरू करता है, चुप नहीं रहता है। तुम्हारे पास क्या है जो भगवान को सुनाओगे? अरे भगवान की सुनो और उसका प्रणमन करो तो तुम भगवान बन जाओ। तो आज का दिन भगवान की सुनने की बात है। अभी तक तो भगवान को सुना ही है तुमने, क्योंकि वे तो मौन थे, वे तो बोलते नहीं थे, दीक्षा ली थी तो मौन ही थे कि नहीं थे। अब उनकी दिव्य ध्वनि खिलेगी, सब अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं, ख्याल में है ना। भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है सिर्फ ओ, उसको निरक्षरी भी कहते हैं, अनक्षरी भी कहते हैं, एकाक्षरी भी कहते हैं, और सबके कानों में जाते जाते उनकी भाषा के रूप में परिणमित हो जाती है। तो ऐसी उन्दर सुंदर व्यवस्था थी क्या, जैसे आज भी लोकसभा में है कि नहीं, जो बटन दबाओ हिंदी वाला तो हमारे हिंदी में कान में सुनाई देने लग जाए, अंग्रेजी वाला तो अंग्रेजी वहां बोल रहा है एक भाषा में, और सब भाषा वाले अपनी अपनी भाषा में सुन लेते हैं कि नहीं सुन लेते हैं। ऐसी सोधर्मेंद्र की सुभूषण में सुनने की व्यवस्था थी कि सब अपनी अपनी भाषा में उस बात को समझ लें। तो ये तो उनकी सभा का स्वरूप था, ये तो उनकी वाणी का स्वरूप था, लेकिन असली मुद्दे की बात तो ये है कि उनकी वाणी में वो आया क्या था ऐसा जज्ब कि जिससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। बोलिए क्या सुनाया था भगवान ने बैठ करके सुभूषण में? एक था राजा, एक थी रानी, वो दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये सारे किस्से लेके बैठे होंगे भगवान समोसरण में, क्यों? कि जिस चीज को समझने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है, जिसका ध्यान करने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है, जिसका ज्ञान करने से, जिसका श्रद्धान करने से, उस भगवान आत्मा की बात उस भगवान की दिव्य ध्वनि में आई थी। क्योंकि अपने मूल मुद्दे की बात यह है कि इस पंच कल्याण का हमारा सम्यक दर्शन में निमित्त होना चाहिए, तो सम्यक दर्शन में क्या निमित्त होगा? एक किसी का कहानी किस्सा कि क्या, बोलिए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ये जो कहानी किस्से है ना, वो सब यहां से शुरू होते हैं। हर उठा के देख लेना जिनवाणी में, एक समय बिपुला चले तीर और समूसरण आयो महावीर। और राजा सैनिक पहुंच गए वहां और उन्होंने कहा कि महाराज आज हमें तो धन कुमार जी का चरित्र सुनाइए। तो भगवान ने धन कुमार जी का चरित्र सुना दिया, धन कुमार जी का चरित्र। फिर दूसरे दिन दूसरे पुण्य ने कहा कि हमारा तो निरंजन भाई का चरित्र सुनाइए। तो निरंजन भाई कैसे ये होता होगा, लेकिन सब में ये लिखा है। वो जो तत्वार सूत्र है ना, समय सार है, उसमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। उन्होंने समय से ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ये शुरू कर दिया, मंगलाचरण तक नहीं लिखा, वो तो बाद में किसी ने लिख के जोड़ दिया। आत्मा की बात शुरू कर दी उनने, तो ऐसा लगता है कि ये तो इनकी बात है और वो भगवान महावीर की बात है, क्योंकि उसमें वो जोड़ जोड़ के बोला ना उन कहानी किस्सों के साथ। मुझे जब मैं पंडित टोडामल पर शोध कर रहा था, तो उदयपुर के पास एक मंदिर में
एक किताब मिली छोटी सी, वो 125 वर्ष पुरानी छपी थी। उस किताब का नाम था मिथ्यात्व खंडन, और वो किताब मान ने कहा शुरू हुई थी, यहीं से। एक समय विपरा चलती समोषण आयो महावीर, और वहां पर पूछा राजा सैनिक ने कि पंचम काल में मिथ्यात्व का प्रचार कैसे होगा और कौन करेगा। तो उन्होंने कहा कि जयपुर नगर में एक टोडरमल पंडित होगा, वो मिथ्यात्व का प्रचार करेगा। भगवान ने महावीर ने कही, वो एक किताब में लिखा था मेरे पास से, तू बस ये डाल दो। राजा ने पूछा भगवान ने कहा कुछ भी खोज दो। तो मैंने बहुत खोजा कि मेरा नाम नहीं है। अब भविष्य में कोई कभी होगा तो मेरा नाम भी आ जाएगा। ऐसी गलतियां हम कम करते हैं क्या? क्यों? यहां भगवान ने मीनाथ का प्रकरण चल रहा है, दूत आ रहा है, वो खबर सुना रहा है कि आपके किनके दरबार में, वो ग्रसन के, क्यों भैया, समुद्र विजय के में, कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, और साथ में कहता है कि 10 वर्ष पहले आदिनाथ के पुत्र रत्न की प्राप्ति का समाचार भी मैंने ही दिया था आपको। नाविदाय के दरबार में भी यही थे, समुद्र विजय के में भी यही थे, और आप ही को समाचार दिया था। उनको सिर्फ ये बताना था कि ये पाठ करने का मौका उस वक्त भी मेरे को मिला था 10 साल पहले, तो उसके लिए उन्हें उसमें ही बीच में ही ठोक दिया। वो भूल ही गया कि मैं वह दूत हूं। कि मैं रमेश सुरेश नहीं हूं, मैं अभी वह दूत हूं। क्यों? आपको पता नहीं है, इनको पता होगा, दीपक को, कहाँ दीपक था ना, हाँ, के एक दिन पंच कल्याणक हो रहे थे अपने सोनगढ़ के आसपास कहीं, तो फिर आया प्रश्न कि अभी कौन बनेगा माँ बाप। तो फिर एक आदमी का नाम आया, तो कहा साहब ये तो 5 साल पहले बन चुके थे कि वे दोबारा बनवे तैयार हैं। बहुत बड़े आदमी का नाम था, इतने बड़े आदमी का था कि मैं ले नहीं सकता, बुजुर्गों का नाम लेना नहीं चाहिए। तो मेरे सामने बात आई तो मैंने कहा भाई कैसे बन सकते हैं, बन ही नहीं सकते हैं पिता, क्यों? जब 5 साल पहले उन्हें ब्रह्मचर्य ले लिया तो पिता बनेंगे कैसे? पता ही नहीं कि हमने ब्रह्मचर्य ले लिया, ब्रह्मचारी पिता नहीं बनते हैं, और यदि ब्रह्मचारी लोग पिता बन सकते हैं तो तुम्हें क्यों बनोगे, सुमत प्रकाश क्यों नहीं बनेगा हमारा, इसने क्या पाप किया, ब्रह्मचारी लोग बने फिर क्यों? उस मामले पर ठंडा पड़ गया, गुरुदेव मौजूद थे शायद, तब की बात अगर नहीं होंगे, लेकिन इस मामले पर बात ठंडी पड़ गई, फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। तो हमें पता ही नहीं है, हमें भूल गए ना, वो आदमी ये भूलेगा भगवान महावीर के संबोधन में राजा सैनिक और जयपुर में कब कौन में छात्र का प्रचार करेगा, वो एक किस्सा लेके बैठे होंगे, उनको कुछ मतलब नहीं है, उन्हें तो बस इतना कहना है क्योंकि ये महावीर की सील लगाना है उस पर। तो ये जो कहानी किस्से वाली बातें हैं उस वो तो इस भाषा में लिखी हुई हैं, और ये जो तत्व ज्ञान की बात है, तत्वार सूत्र जैसा महाग्रंथ है, समय सार जैसा महाग्रंथ है, उसके शुरू में आचार्यों ने ऐसा कुछ नहीं लिखा, भगवान को एक लेन में नमस्कार किया और अपनी तत्व की बात शुरू कर दी। तो ऐसा लगता है कि ये जो किसी आदमी की बनाई किताब है। अब वो किताबें तो हमने मालूम वो ऐसी छापी आड़ी और बिना बाइंडिंग की ऐसी रखी, तो वो हो गए शास्त्र जी सावधान, सब लोग आगे खड़े हो गए, हैं कि नहीं, खोल के देखे, और सूत्र जी हमने एक गुटका सा छाप लिया और जेब में रख लिया, तो ये इस तत्वा सूत्र जो महाशास्त्र है वो गुटका हो गया, रह गया वो शास्त्र और ये गुटका। सम्यक दर्शन का स्वरूप जिसमें है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्षा जिसमें है, तत्वार सिद्धानम जिसमें है, क्यों भूयत्थे नाभिगता जीवा जीवा बंदे मोक्षम, ये जिसमें है वो तो हो गया किताब रह गई बनके, वो तो गुटका बनके रह गया और वो हो गए शास्त्र। तो मैं आपसे पूछता हूँ भगवान के समोसन में बैठ के उनने कौन सी चीजें समझाई होंगी? तो कहते वाह सारी द्वादशांग वाणी उन्हीं की ही वाणी है, मैं भी मानता हूं कि उसी में से सब निकला है, लेकिन मुख्य रूप से बात हम कहें सिलेक्शन का यदि सवाल आए तो क्या चीज कही होगी? टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि पांच चीजें हैं बस, सच्चे देव सास गुरु का स्वरूप, सात तत्वों का सिद्धांत, स्वपर का भेद विज्ञान, और कौन से भाव हितकारी हैं और कौन से भाव अहितकारी हैं इस बात का निर्णय करे, बस इतना ये है, ये सिलेबस है सम्यक दर्शन की प्राप्ति का। तो भगवान की दिव्य ध्वनि का मूल जो प्रकरण है वो ये चीजें हैं कि जिनसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। लड़ने झगड़ने के लिए तो बहुत है, ये जी सौरीपुर है ना, सौरीपुर अपने कौन से नेमिनाथ भगवान का, सन 65 में मैनपुरी गया था पर्यूषण में, जब वो भारत हिंदुस्तान की लड़ाई चलती थी ना पाकिस्तान हिंदुस्तान की, वो कौन लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां की, तब की बात है, सही घटना। मैं वहां गया तो वहां एक वकील साहब थे, ऐसा कुछ नाम था इंद्र, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा नाम, इंद्रजीत सिंह ऐसा कुछ नाम था, अभी है कि नहीं मुझे पता नहीं, बुजुर्ग थे। उनके घर खाना खाने गए तो वे पीछे पड़ गए कि साहब आपको ये पता लगाना चाहिए कि सौरीपुर है ये आगरा बाग के पास वाला है, जिसे कल लोग यहाँ असली कह रहे थे ना कि वो गुजरात वाला है, असली सौरीपुर कौन है, नेमिनाथ की जन्मभूमि असली कौन है? तो मैंने कहा होगी कोई भी होगी, क्या फर्क पड़ता है, क्यों नहीं नहीं नहीं, बहुत पीछे बहुत पीछे पड़े, खाना ही मुश्किल हो गया, फिर खाना निबट गया फिर भी पीछे पड़े रहे। तो मेहताब सिंह नाम था मेरे वकील साहब का, तो मैंने कहा वकील साहब एक बात बताओ कि ये इसका मतलब पता लगना बहुत मुश्किल है कि कौन है असली, लेकिन मैंने सारा जीवन लगा के और ये पता भी लग गया अंत में कि असली ए नहीं ए है, तो मुझे सम्मान दर्शन हो जाएगा कि नहीं, समझना समझ क्या लेना देना है इसका। तो मेरे का मैं अपने मनुष्य को बर्बाद काय को करूं, तुम लोग लगो इसमें, तुम जो काम कर रहे हो वो छोड़ के इसमें लगोगे तो पाप से बचोगे पुण्य में लगोगे, और मैं छोड़ के करूंगा तो आत्मा के कल्याण देने के लिए, तुम लगो ना इसमें, मुझे क्यों लगाते हो? इसका निष्कर्ष भी निकलना मुश्किल है, और निकल गया तो क्या होगा, मेरा तो जो होगा सो होगा, लेकिन मैं पूछता हूं कि यदि मैंने ये सिद्ध कर दिया कि ये गुजरात वाला है ये वाला नहीं है, तो तुम लोग मानने को तैयार हो आगरा के आसपास वाले? क्यों कोई मानेगा? अरे मुझे पागल खाने में भर्ती करा दे, कहे पंडित देखो यूपी का होगा यूपी का विरोध कर रहा है, यानी मैं यूपी का हूं तो मैं ये सिद्ध करूं कि वे यूपी के थे गुजराती नहीं थे, और कहते गुजरातियों ने खरीद लिया गुजरातियों ने खरीद लिया पंडित। और यदि मैंने ये कह दिया कि गुजरात का नहीं है आगरा का है, तो गुजराती मेरे को बख्शने वाले हैं? हिंदी वालों का आई कहीं काम न थी, मुझे उपलब्ध क्या होगा? इस रिसर्च के बाद मेरे जो श्रोता है ना, हिंदी और गुजराती एक साथ बैठते हैं सुनने के लिए, इनमें से आधी पार्टी टूट जाएगी, ये उपलब्ध होने वाला है, ना सम्मान दर्शन होने वाला है ना कुछ होने वाला है, और पता भी लग गया तो, और नहीं लगा तो मुफ्त में सारी जिंदगी जानी है। ये इतिहास वालों को बहुत बुरा लग सकता है मेरी ये बात, है ना, क्योंकि जो पत्थरों को खोज खोज कर और पत्थरों को पढ़ पढ़ कर सारी जिंदगी उसमें माथा लगा करके अपने को विद्वान समझते हैं, उनको ये शास्त्र पढ़कर कि जो की वाली जो विद्वत्ता है सम्मा दर्शन वाली वो उनकी समझ में नहीं आती। क्यों मैं आप लोगों से पूछता हूं, कि जमीन में एक पतखुरा एक पत्थर निकला, उस पत्थर पे लिखा निकल आया कि ये असली सोरीपुर ये आगरा वाला है, पत्थर पे लिखा निकल आया। तो आप लिए लिए फिरते हैं पुरातत्वी प्रमाण, क्या बोलते हैं पुरातत्व का प्रमाण है, लेकिन ये भाई साहब लिखाया किसने है? किसी वितरागी संत ने लिखा होगा, अरंत भगवान ने लिखा होगा, आचार्य ने लिखा होगा, उपाध्याय ने, सर्व साधु ने, किसी सम्यक दृष्टि ने, क्यों कि किसी राजा महाराजा ने जो दिन में 7 बोतल पीता होगा उसने लिखवाया होगा वो इतिहास, जिसको जो इतिहास कहते हैं वो किसका लिखवाया होगा? वो जीते वाले राजा का लिखवाया हुआ होगा उस पत्थर पे लिख के, और उसने जमीन में गाड़ दिया कि अपने आप टूट टाट के जमीन में गड़ गया, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमाण हो गया। और जिनने सारी जिंदगी झूठ नहीं बोलने की प्रतिज्ञा ली थी, ऐसे कुंद कुंदाचारी देव कहते हैं कि मैं तुम्हें आत्मा समझाऊंगा, तो इसलिए हमारे लिए किताब हो गई, गुटका हो गया, ये कुछ नहीं रहा हमारे लिए। क्यों? इनके लिए हम कहते भद्रता प्रूफ प्रमाण लाओ, लेकिन इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? 2000 वर्ष पुराना है, तुम्हें 100 वर्ष पुराना पत्थर का टुकड़ा मिल जाए तो वो इतिहास हो जाता है। क्यों हो जाता क्या नहीं हो जाता? और 2000 वर्ष पुराना ये शास्त्र तुम्हारे लिए कुछ नहीं है? भगवान ने 700 वर्ष तक बैठ करके आखिर समूह शरण में क्या कहा होगा? वो मूल बात क्या होगी कि जिससे सम्मा दर्शन की प्राप्ति होगी? वो इतिहास के वो भूगोल के क्या होगा बोलो? टोडरमल जी ने कितनी भोलेपन से जवाब दिया है कि होगा सोरीपुर होगा, गुजरात में होगा कि यहां होगा। अरे कहीं ना कहीं कि नगर में ही पैदा भए थे, जंगल में तो पैदा नहीं भए थे, काय को माथा मारते ऐसा लिखा, किसी नगर में ही पैदा भए थे हैं? और चाहे वो वहां हुए हो चाहे यहां हुए, सो धर्मेंद्र तो वो ही आया होगा, नगरी तो उसी ने बसाई होगी, पांडव शिला पर तो वही ले गया होगा। क्यों? इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो उनकी भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या माल आया होगा? वो जिसको सम्मा दर्शन की प्राप्ति का कारण है वो माल, उसमें कौन सी चीजें जरूरी हैं? देव शास्त्र गुरु सम्यक दर्शन की परिभाषा में आचार्य समन्त भद्र ने लिखा, श्रद्धा नाम परमार्था नाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पूर्ण अष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। ये लोग जब करते हैं देवशास्त्र गुरु की चर्चा करते हैं ना, तो समझते हैं हमारी बुराई कर रहे। ये किसी की बुराई की बात नहीं है, हम तो तुम्हारा नाम भी नहीं लेते, डर लगता है हमें तो। लेकिन हम क्या करें, शास्त्र में सम्यक दर्शन की परिभाषा में वो शामिल क्रिया है, उसका स्वरूप जानना हमें बहुत जरूरी है। वो हमारे अनिवार्य कोर्स में है, हमारी वो कोर्स की किताब है, उसके बिना हम पास नहीं होएंगे। क्यों समझे ना? देवसाध गुरु का स्वरूप सच्चा हमारे ख्याल में नहीं होगा तो भी हमें सम्मा दर्शन नहीं होगा। कैसा सात तत्व तो समझ लें और आत्मा समझ लें, क्या जरूरत है देवसाध गुरु की? उन्हें एक तरफ बैठे रहने दो, समझाएगा कौन? गुरु तो समझाएंगे, देव की वाणी में से तो समझेंगे, उन्हीं के शास्त्रों को पढ़ के तो समझेंगे। पहले उनका सही निर्णय नहीं होगा तो अकेले ये समझ लो, समझ कहां से लें? तो वो हमारे अनिवार्य कोर्स में है, 7 तत्व की का समझना हमारे अनिवार्य कोर्स में है। आसब की क्या जरूरत है? आत्मा ही समझ लो ना सीधा, क्यों बेकार पर में जानने का झंझट ही क्यों रखते हो? वो तो व्यवहार है ना, जानता ही कहा है, झगड़ा खत्म। लेकिन भैया आश्रम नहीं समझोगे तो आश्रम में नहीं हूं, या कैसे समझोगे? अजीब नहीं समझोगे तो अजीब में नहीं हूं, ये कैसा समझोगे? बंध नहीं समझोगे तो बंध में नहीं हूं, ये कैसे समझोगे? बोलिए, ये भेद विज्ञान करना है कि नहीं? कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, तो ये और ये दो चीजें समझनी पड़ेंगी कि नहीं समझनी पड़ेंगी? मैंने वो तुम्हारा वो छपा हुआ देखा है, वो लंबा चौड़ा क्या कार्यक्रम पंपलेट, उसमें ही लिखा है कि जो सब पर्यायों को जाने, सब द्रव्यों को जाने, इसको जाने, उसको जाने, वो सर्वज्ञ, ऐसा लिखा है उसमें। गुरुदेव का कोटेशन में लिखा है, वो देव के स्वरूप में शामिल है भाई साहब, वितरागता और सर्वज्ञता। आज जो भगवान को हुआ है ना, वो दोपहर में क्या हुआ था, वो केवल ज्ञान हुआ था, कुछ केवल ज्ञान क्या हुआ था, वो केवल ज्ञान। केवल ज्ञान में क्या होता भैया, इसने किसको जाना था आज, आज अपने अपने आत्मा को जाना था। मैं पूछना चाहता हूं, मैंने 10 साल पहले भी इसी सभा में पूछा था यहीं इसी पंडाल में, कि आज भगवान को हुआ क्या, आज उनने केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान तो ठीक है, लेकिन केवल ज्ञान में उनने आज जाना क्या, आज नया क्या जाना, मैं जानना चाहता हूं। अपने आत्मा को जाना था उनने आज, क्यों? अरे आत्मा को तो वे जन्म के पहले से जानते थे, मां के पेट में भी आत्मा को जानते थे। उसके बिना तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। वे वैजयंत नाम के, जयंत नाम के विमान से आए थे ना, वहां मिथ्या दृष्टि जाते ही नहीं है, वहां भी वे आत्मा को जानते थे। और उसके पहले भ्रम में जा तीर्थंकर प्रकृति बांधना शुरू किया होगा, तब भी वे आत्मा को जानते थे। एक समय भी आत्मा को जाने बिना, तब से आज तक मां के पेट में भी आत्मा को जाने बिना रहे नहीं है। आज जो हुआ है, उनने वो आज आत्मा को नहीं जाना, सारे लोकालोक को, प्रत्येक द्रव्य को, उसकी प्रत्येक गुण को और उसकी प्रत्येक पर्याय को जाना। उन्होंने यहां बोला था ना, उसकी शिकायत बहुत बड़ी अदालत में पहुंची थी यहीं से, कि यहां पर ये कहा डॉक्टर साहब ने, ये कहा, ये कहा, ये कहा, क्या हो गया और चलते, ये कहा, ये कहा, आज ये जाना था, आज क्या जाना था। मैं आपसे पूछता हूं, क्यों दीपक भाई, क्या हुआ था, आज क्या जाना था उनने, ये सारे लोकालोक को जाना था कि नहीं जाना था। आत्मा का अनुभव तो उन्हें पहले से ही था। अरे आत्मा को जानने का नाम तो शुद्धोपयोग है। छपक श्रेणी में वे आत्मा को ही जान रहे थे। आत्मा को जानते जानते तो ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ है कि सारा लोकालोक उनके ज्ञान में झलक गया है। क्यों? वो तो साधन था, वो उपलब्धि नहीं थी। देखो दो ही बातें मुख्य हैं, एक आत्मा को जानना और एक परमात्मा को जानना। लोकसभा प्रकाशक में लिखा ना कि सती की गति दो ही है, या तो पति का घर या पिता का घर। तो असली बात तो है पति के घर रहना। सारी जिंदगी तो पति के घर में कटेगी आनंद से, लेकिन मन ना लगे, कभी थोड़ी झड़प हो जाए पति से, थोड़ी बहुत हिंदुस्तान जैसी, तो पिता के घर चली जाए और महीना 15 दिन वहां रह के लौट के आ जाए। क्यों? तो चले, तो बदनामी नहीं होगी। तीसरे घर गई तो मरी। और पिता के घर भी यदि 2 महीना रह गई तो अड़ोस पड़ोस में चर्चा शुरू हो जाएगी, क्या बात है, क्या बात है, ये आई से यहीं जम के रह गई, जाती नहीं है। क्यों? और यदि 6 महीने रह गई तो भाई भाभी में चर्चा शुरू हो जाएगी, भाभी भाई से कहेगी जी भाई साहब यहीं रहेंगे क्या भाई के चुप रहे, चुप रहे, क्यों चुप रहूं? और यदि साल भर रह गई तो अम्मा जी कहने लगेंगी पापा से कि तुम्हें कुछ होश है कि नहीं है, साल भर से बेटी यहीं बैठी है, पता तो करो क्या बात है। क्यों? घर में रहना मुश्किल हो जाएगा, सब समझाना शुरू कर देंगे, ज्यादा दिन नहीं रह सकती, ज्यादा दिन रहे तो पति के घर ही रहना पड़ेगा। ऐसी इस आत्मा की परिणति है, या तो अपने आत्मा में रहे तो पति का घर है, और यह परमात्मा वो पिता का घर है, कि वहां जाए के यहां, वहां के यहां, यहां के वहां, तीसरी जगह गई तो मरी। और परमात्मा के पास भी ज्यादा नहीं रह सकती है, ज्यादा रही तो चर्चा होने लग जाएगी, हैं? कि ये 8-8 घंटा जय जय नाथ परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु, तो कहेगा दिमाग तो ठीक है ना स्वाध्याय 10 घंटा करो, आत्मा में गिर अपनी बात समझने की कोशिश करो, ख्याल में है ना, ऐसा नहीं चलेगा।
तो ये जो परिणति है इसकी तीसरी जगह कोई गति नहीं है।
अब मैं बोल रहा हूं, आत्मा माने सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा, और परमात्मा माने सर्वज्ञ पर्याय से संपन्न आत्मा। सुनना, सर्वज्ञ स्वभावी माने आत्मा, और सर्वज्ञ पर्याय से संपन्न उसका नाम परमात्मा। ध्यान से सुनना, तो चूंकि सर्वज्ञ पर्याय से संपन्न यदि मैं नहीं हूं, इसलिए परमात्मा है पर और आत्मा है निज, समझे ना। तो आत्मा है निज और परमात्मा है पर। तो परमात्मा के पास जाओगे माने सर्वज्ञ के पास जाओगे, जिसमें सर्वज्ञता प्रगट है, तो वो सर्वज्ञ भगवान हमें ये समझाएंगे कि मेरी तरफ क्या देखते हो, मैं जो सर्वज्ञ बना हूं वो किसी को देख कर नहीं बना हूं, अपने को देख करके बना हूं, तो अपनी को देख। नहीं आया समझ में क्या कहना चाहता हूं? असली माँ बाप कौन है लड़की का हित चाहने वाली, कि जब उन्हें पता चल जाए कि लड़के पति से आई है, तो 2 दिन तो प्रेम से रखें, 10 दिन रखें, महीना भर रखें, और फिर प्रेम से समझा कर उसको पति के घर भेजने के लिए तैयार करें, और निरंतर ये समझाएं कि बेटी तेरा ये घर नहीं है, इस घर में तुम सुख नहीं पाएगी, अभी तेरी भाभी को पता लगा कि तुम लड़के आई है तो यहां कोहराम मच जाएगा। क्यों? सही माँ बाप वो है ना कि जो लौट के उसको पति के घर भेज दें। बे माँ बाप सही है ना, हमारे घर के खाबे नहीं है क्या, वे समझते क्या है, चल रहे नहीं, जिंदगी भर रखूंगा मैं तेरे नाम 10 लाख रुपए लिखा के जाऊंगा मरने के पहले। अरे यदि वो रह भी गई तो भाई के बाल बच्चों के कपड़ा धोते धोते जिंदगी जाएगी, अपने बच्चों के कपड़े धोने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि बच्चे ही नहीं होंगे तो कपड़े धोने को कहां से मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं? आप सही माँ बाप कौन है जो उसे अपने पति के घर भेज दें? तो सही परमात्मा कौन है जो उसे उसी आत्मा के पास भेजने की बात के लिए समझाए, और जो कहें मामाई के शरणम बजे, तू मेरे में आजा मैं निबट लूंगा, आराम से रह, कोई तकलीफ नहीं है, तू तो मेरी भक्ति किए जा, बाकी मेरे हिसाब किताब में मैं देख लूंगा। वो सही नहीं है, वो जिंदगी भर दास बनाने का चक्कर है, वो भगवान दास बनने का उपाय है, वो भगवान बनने का उपाय नहीं है। जैनियों के भगवान है, भगवान ने समोसन में बैठ करके सब आत्माओं से ये कहा है कि बधा भगवान छे और बधा भगवान था। ये जो वो समोसरण की मैं भगवान की दिव्य ध्वनि में जो मूल माल आया वो ये माल है, और भाई ये वो चीज है कि जिसके कारण ये पूरा पंच कल्याणक सम्यक दर्शन का निमित्त बनता है। अंतिम बात कह के समाप्त करता हूं। कि भाई साहब तुम कुछ भी कहो, कोई नेमीनाथ का तो नहीं है ये, वो नेमीनाथ वो तो बात ही दूसरी होगी वो तो, लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं कि उस नेमीनाथ भगवान के समोषण में जो आदमी होगा वो उसने ये बात नहीं समझ पाई तो वो असली समोषण में जाकर के भी उसने क्या पाया। और ऐसे लोग थे, नाम भी गिना सकता हूं, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बड़े सम्मान के साथ उन्हें बारात में लाए थे। थे ना ऐसे लोग कि उनने कहा था 1200 वर्ष के बाद द्वारका जल जाएगी, कहीं कहा था नेमीनाथ ने, तो उनने मूंछ पर ताव दे के कहा था देखें कैसे जलती है, जो आया सो कह दिया कि जल जाएगी, अरे हमने बनाई है, हमारे जिंदा रहते द्वारका जल सकती है। कि वो दीपायन मुनि का क्रोध, अरे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बुलाओ दीपायन को, दीपायन हाजिर, क्यों तुमने सुना क्या कहा? हाँ हुजूर सुना। कि मैंने ये सोचा है साहब कि मैं तो यहां से दूर भाग जाऊं और 12 वर्ष तक यहां आऊंगा ही नहीं। कि तुमने बहुत अच्छा सोचा, नहीं तो हमें सोचना पड़ता कुछ। शराबबंदी लागू
है ना। समोसन में पहुंच करके भी पर का कर्तृत्व का अभिमान नहीं टूटा, भगवान की वाणी पे भरोसा नहीं हुआ, निमित्तों को मेट कर अपने को सुरक्षित समझने लगे, उपादान की योग्यता की बात समझ में नहीं आई, तो क्या हुआ असली नेमिनाथ के संभोषण में जाकर के भी। और तुमने इस पंचकल्याणक में आकर के ये बात समझ ली तो तुम्हारे लिए वो उस असली से भी है, असल नकल उससे अच्छा है, क्योंकि मूल बात तो उससे है, ये आपकी समझ पर निर्भर है, उससे भी बढ़िया हो सकता है कि नहीं, बोलो विजय बाबू। ये हमारे लिए केवल ही आगल रहेगा कोरो, गुरुदेव श्री फरमाते थे ना कि हम केवली के पास जाकर के भी कोरे के कोरे वापस आ गए, और यहां से धुल पिचकित गाए तो फर्क पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा। इसलिए ये मत सोचो कि वो असली नकली का चक्कर मत रखो, हमारे लिए तो यही असली है, क्योंकि हमारे पुण्य में ऐसा कहां योग है। अभी तुमने बताया था कि नवीनाथ से नवीनाथ में कितने 5 लाख बरस जमाना कितना बढ़ गया है, उनमें 5 लाख बरस और नवीनाथ से पारसनाथ में बहुत कम है, और पारसनाथ से महावीर में 250 बरस, जमाना वो अच्छा था कि ये अच्छा है, समझ में आया ना कितने जल्दी जल्दी तीर्थंकर हुए। और एक बात अंतिम कहता हूं कि उस जमाने से आज का जमाना बहुत अच्छा है। उस जमाने को क्या रोते हो, पराए पूत की आंखें बड़ी बड़ी दिखती हैं मरे हुए पूत की, आज का जमाना बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है, देखो ये वीडियो है, कैसेट है, ऑडियो कैसेट है, महावीर के जमाने में कहां थे, और होते यदि वीडियो फिल्म वहां होती आज महावीर की यहां, क्यों उसे हमें सबको दिखाते तो सारे झगड़े खत्म हो जाते। दिगंबर सत्ता के सीतामर सत्ता के महावीर से पूछ लो, वीडियो में बैठे दिखे बता दे, नहीं है ना, उनकी वाणी आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ना वीडियो में ना ऑडियो में, जो आचार्य लिख गए दूसरे लोग उनके नाम पे वो ही हमारे पास है, वो गलत है ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारे पास अत्यंत परोक्ष रूप में उपलब्ध है। और आज पूज्य गुरुदेव श्री हमारे गए तो 8000 उनके ऑडियो कैसेट हमारे पास हैं और सैकड़ों वीडियो कैसेट हमारे पास हैं, और आज हमने दिव्य ध्वनि सुनी ना, क्यों उनकी आवाज में अपन ने सुनी के नहीं, बोलो दीपक वो जमाना अच्छा कि ये जमाना अच्छा, इतने जमाने को गाली देने से क्या फायदा है? खोटा जमाना है, खोटा जमाना है, अरे हम अच्छे हैं तो जमाना अच्छा है, और हम अच्छे नहीं हैं तो जमाना अच्छा नहीं है। अरे वो तत्व ज्ञान जो नेमिनाथ ने समोसरण में आज के दिन हमें बताया था, वो यदि आज उपलब्ध है किसी भी ज्ञानी धर्मात्मा के माध्यम से हमें प्राप्त है, तो हमारा भाग्य वैसा ही है, और हम वो ही लाभ ले सकते हैं जो नेमिनाथ के पंचकल्याणक में आकर उनसे सम्मदर्शनादि की प्राप्ति करने वाले जीवों ने लिया होगा।